مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ پاکستان میں گرمی کی لہر پر ہے، جس میں اب تک سینکڑوں جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم موسم میں شدت کے تناظر میں سرکاری انتظامات کا جائزہ لیں گے، دیگر ہم آنے والے مانسون بارشوں کے لیے تیاریوں پر بھی بات کریں گے، اور آپ لوگ جو موسم اور موسم کی شدت میں جو صورتحال ہے اس پر کچھ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ میٹ آفس کے ڈائریکٹر عبد الرشید ہیں جو کراچی میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں ایدھی کے ترجمان انوار کاظمی۔ آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتی ہوں، لیکن آئیے اس صورتحال پر آپ کو ایک تازہ رپورٹ سناتے ہیں۔ پیش کر رہے ہیں شہزاد حسین۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں شدید گرمی سے ہونے والی اموات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق پچھلے 4 دنوں میں کراچی میں شدید گرمی سے ہونے والی اموات 500 کے قریب پہنچ گئی ہیں، جبکہ نجی نیوز میڈیا کا کہنا ہے کہ اموات 500 سے کئی زیادہ ہوئی ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اندرون سندھ بھی شدید گرمی سے 200 اموات ہو چکی ہیں۔
ہاسپٹلز میں بھی منسٹر صاحب کو بھی میں نے کہا ایک سیکشن الگ کر دیں جہاں ایمرجنسی سینٹرز ہوں، اور سارے پورے سندھ میں بھی ڈپٹی کمشنرز کو کہا گیا ہے، کمشنرز کو کہا گیا ہے کہ بھائی یہ ہیٹ اسٹروک سے جو متاثرین ہوں ان کے لیے سینٹرز ہوں۔
کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا
کہ رینجرز نے اور دیگر ہمارے ادارے جو ہیں انہوں نے مل کر ہیٹ اسٹروک سینٹرز بھی بنائے ہیں، فرسٹ ایڈ یا کوئی بھی تک سپورٹ اگر دینی ہے کسی گرمی سے افیکٹڈ شخص کو تو اس کی بھی مدد کرنے کے لیے۔
ویسے تو کوئی بھی شدید گرمی سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن کم عمر بچے اور زیادہ عمر کے لوگ اس کا زیادہ شکار بنتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ زیادہ دیر تک گرمی میں رہیں۔ کراچی میں دی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ہر عمر اور جنس کے لوگوں کا علاج کرنے والی فیملی فزیشن ڈاکٹر سمینہ شاہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو شدید گرمی میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
دیکھیں، پہلا کام تو ہے نا پریونشن، ہیٹ اسٹروک ہو کے علاج نہیں ہونا چاہیے، ہیٹ اسٹروک ہونے نہیں دینا چاہیے، نمبر ون رول۔ تو پریونشن کا کیا ہے کہ آپ بہت سخت جب گرمی ہے تو باہر نہ نکلے جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ او آر ایس پانی جوسز فلوئڈز یہ پیتے رہیں، ریگولرلی اپنے ساتھ بوتل رکھیں، اور دوسرا جب بہت گرمی ہے تو گیلا کپڑا نا تولیہ کو گیلا کر کے کور کر دیتے سر پہ، اور اس سے ٹھنڈے رہے وہ لوگ۔
ماہرین کے مطابق شدید گرمی سے انسانی جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے، جس سے کئی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی سے انسانی جسم بہت گرم ہو جاتا ہے، جسم کے بہت گرم ہو جانے سے مختلف اعضاء اور نظام ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے اور موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شدید گرمی سے متاثر ہو جائے تو اسے فوری طبی امداد دی جانی چاہیے، اور طبی امداد ملنے تک متاثرہ شخص کو چھاؤں والی ٹھنڈی جگہ منتقل کرنا چاہیے، اس کے جسم پر پانی ڈالنا چاہیے، گیلے کپڑوں اور پنکھے کی مدد سے متاثرہ انسان کے جسم کا درجہ حرارت کم کرنا چاہیے تاکہ وہ ٹھنڈا ہو کر نارمل ہو جائے، اور اگر متاثرہ انسان پانی پی سکتا ہو تو اسے پانی پلانا چاہیے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ منگل کو کراچی سمیت سندھ کے دیگر حصوں میں بارش کے امکانات ہیں، جس سے گرمی کچھ کم ہوگی۔ ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ مختلف محکموں کے اجلاس میں کراچی میں مصنوعی بارش کروانے کے لیے بھی ماہرین کی رائے لی جا رہی ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور ہم ابتدا کرتے ہیں میٹ آفس کے ڈائریکٹر عبد الرشید سے، اور رشید صاحب آپ کو خوش آمدید۔
بہت شکریہ۔
تو ہم نے بھی دیکھا، یہاں واشنگٹن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو بھارت میں شدید گرمی آئی और बताया जाता है कि हजारों लोग वहां हलाक हो गए। अभी कराची की जो इत्तलात आई हैं इसके हवाले से बताइए, और ये भी बताइए कि कराची और अंदरूनी सिंध में बराबर गर्मी रही, और अगर नहीं रही तो उसकी वजूहात क्या थी।
जी मैं अर्ज करूँ आपसे, ये जो अभी लहर कराची में गर्मी की है और अंदरूनी सिंध में भी आई, इसकी बेसिक वजह कराची के साउथ में अरबियन सी में एक हवा का कम दबाव बनना था, जो कि जिसमें हमारी कराची की जो नॉर्मल विंड है साउथ वेस्टर्ली जो यूजुअली सी ब्रीज कहलाती हैं वो मनकता हो गई, और हमारी विंड कराची की शिमाल से आना शुरू हो गई जो कि इंतहाई गर्म थी और खुश थी, और जिसकी वजह से हमारे कराची के टेम्परेचर भी रेज कर गए और सिंध का टेम्परेचर भी रेज कर गए। असल में कराची और सिंध का जो कोस्ट लाइन है यहाँ पर जो कि हवा में नमी ज्यादा होती है, तो एक चीज आप भी जानती हैं कि हीट इंडेक्स जो है वो बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में इसका तस्करा कम होता है लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा होता है। हीट इंडेक्स ये है कि अगर टेम्परेचर आप कुछ हो और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो तो फिर वो जो आपको फीलिंग टेम्परेचर है बॉडी का वो बढ़ जाता है। छोटी सी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि कराची का टेम्परेचर 43 है और ह्यूमिडिटी 30% है, तो टेम्परेचर इक्वल टू 49 हमारी बॉडी को फील होगा, तो हीट इंडेक्स क्योंकि बढ़ गया। ये हमारी मैच की तारीख में पहली बार ऐसी लहर और इस किस्म की हमने पहले के जो ऑब्जर्व नहीं की जो कि हमने इस साल ऑब्जर्व की है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जून का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है कराची का वो रिकॉर्ड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। जून का मैक्सिमम टेम्परेचर का रिकॉर्ड कराची का 47 डिग्री सेंटीग्रेड है जो 18 जून 1979 को रिकॉर्ड किया गया था। अलबत्ता ये जो अभी लहर आई है गर्मी की जिसमें हमें 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फेस करना पड़ा 20 जून को, ये पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा था।
अच्छा।
तो असल मसला ये है कि क्योंकि रमजान का महीना है हमारे पाकिस्तान में और मुसलमान हम सब रोजा रख रहे हैं यहाँ पर, और ऊपर से ये गर्मी की लहर आ गई, एक लो प्रेशर एरिया अरबियन सी में बन गया जिसने हमारे सी ब्रिज को मनकता कर दिया और हमारे टेम्परेचर रेज हो गए और पानी लोग पी ना सके और हब का आलम था, तो ये कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई।
अच्छा।
और गाहे बगाए हम लोगों को इस बारे में आगाह करते भी रहे, टेम्परेचर बढ़ते रहे, और अब तो माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि आज कराची में 41 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम टेम्परेचर में रिकॉर्ड किया है। और सबसे अच्छी बात जो आज मैंने नोट की है वो ये है कि कराची की पुरानी विंड जो हमारी साउथ वेस्टर्ली विंड है सीरीज वो आज दोपहर 2 बजे से स्टार्ट हो गई है और टेम्परेचर 2 बजे के बाद कराची के और कम होना शुरू हो गए हैं।
लेकिन आप जानते हैं कोई बईद नहीं है कि क्योंकि गर्मियों की का सीजन शुरू हो गया है तो आगे चलकर भी गर्मी हो सकती है। आप
एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे सिंध में कल और कल रात को और बशमूल कराची, कराची में चांस अलबत्ता कम है लेकिन अंदरूनी सिंध ज्यादा है।
अच्छा,
खासतौर पर जो हमारी ईस्टर्न सिंध का इलाका है, साउथ ईस्ट सिंध का, ये आपका मिट्टी है बदीन ठट्टा, यहाँ पर अच्छी खासी कल बारिश होगी।
अच्छा, अच्छा।
और कराची में भी उम्मीद करते हैं कि आज रात बारिश हो जाएगी। अच्छा। तो और कूलिंग हो जाएगी।
जी जी रशीद साहब, आप हमारे साथ रहें, इस वक्त हम कोशिश करें। जी जी, इस वक्त हम जो गर्मी है इसके जो असरात हैं और बहुत ही खराब असरात जो हुए हैं इस पर हम फोकस कर रहे हैं। हमारे साथ ईदी के तर्जुमान अनवार काजमी हैं, और काजमी साहब आप हमें कुछ सूरत हाल के बारे में बताइए कि आपकी एम्बुलेंसेस जो गई हैं ज्यादातर लोगों को सड़कों से उन्होंने उठाया या आपको घरों से भी टेलीफोन कॉल्स आए, और उनको कहाँ ले जाए गए, क्या क्लिनिक्स में ले गए आप लोगों को या फिर अस्पतालों में?
लेकिन बीबी असल में जब पहले दिन 21 जून से ये शुरुआत हुई है, 20 जून से शुरू हो गया था, इसमें शिद्दत आ गई, सड़कों से भी लोगों को ले जाया गया जो काम करने निकले थे, मजदूर पेशा थे, घरों से भी गए लोग, इत्तलाएं आई, और उसके अलावा जो है खास तौर पे वो जो भीख मांगते हैं सड़कों पे होते हैं और बूढ़े लोग हैं, तो हमारी एम्बुलेंसों ने तकरीबन घरों से भी सड़कों से भी और सबसे ज्यादा जो है वो सड़कों से उठाया।
अच्छा।
अब इसमें बड़ी मतलब मुश्किल बात ये थी कि हॉस्पिटलों में जगह नहीं रही थी।
अच्छा।
कराची में जिला हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें हम ले गए, उन्होंने एक हद तक तो दाखिल किया, उसके बाद फिर उन्होंने मना कर दिया कि जी हमारे पास जगह नहीं है। सिविल हॉस्पिटल दूसरा बड़ा था, वहाँ भी यही सूरत हाल थी। अब्बासी हॉस्पिटल, ये मतलब हमारा ये अपना एक मुशाहदा है कि इस तरह के हालात में शायद हम सही तौर पे इसको डील नहीं कर सकते।
अच्छा
आज भी हमारे देवर बेचारे तकरीबन जो है 72 घंटे होने आए हैं, वो लगे में मत के बाद ऐसी भी हुई है। हम आज के दिन पे अफसोस होता है कि ये गुलिस्तान जौहर में एक फ्लैट में 70 साल की बेटी, 100 साल की माँ थी, लाइट चली गई।
अच्छा
उसके बाद जो है वो दोनों गर्मी की शिद्दत से हलाक हो गए।
अच्छा
तो इस तरह के मतलब आज भी तकरीबन जो है 18 डेड बॉडी उठाई, 20 से गरीब जो है वो बेहोशी की हालत में, और बाद जरा 22 स्टेबल थे उनको रास्ते में, जैसा कि फैसलईदी में जो सरबरा है आजकल ईदी फाउंडेशन के ड्राइवरों को हिदायत कर दी कि इन्हें वो आदर्श हमारी हर गाड़ी में इमरजेंसी में रखवा दिया है।
अच्छा,
फिर इनके ऊपर पानी जो है हम छत से ऊपर नीचे कप तक डालते हैं ताकि उनको किसी हद तक बचाया जाए।
अच्छा काजमी साहब, यकीनन पूरे मुल्क से कहानियां इस तरह की आ रही होंगी, कराची से और अंदरूनी सिंध से, और आगे चलकर हम डॉक्टर शेरशाह सैयद को सुनेंगे जो इस वक्त अंदरूनी सिंध में हैं। लेकिन हमें कोट अड्डू से कॉल आई है, राणा दिलशाद कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा जी, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। रशीद साहब, आप हमें बताएं, अब्दुल रशीद साहब ये बताएं, आपने ईदी के नुमाइंदे को सुना और आप भी जानते हैं कि जो लोग हैं घरों में मर गए हैं इस गर्मी में, हालांकि आप सरकारी अहलकारों के साथ तो नहीं हैं और बिजली देने वालों के साथ तो नहीं हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं इंतजामिया इस स्टेज पे कितनी तैयार नजर आ रही थी इस गर्मी की लहर के लिए?
नहीं, इंतजामिया सही मायनों में तैयार नहीं थी, मेरा यही कहना है। क्योंकि असल अमवात जो हुई है, देखिए कराची तकरीबन 2.25 करोड़ की आबादी हो गई है हमारे शहर की, इससे छोटे मुल्क हैं दुनिया में, जितना बड़ा हमारा शहर है कराची सिटी, है ना
जी।
और यहाँ पर ज्यादातर जब निशाने जोर का भी जिक्र किया आदमी साहब ने, तो छोटे छोटे फ्लैट हैं दड़बानुमा जिसमें हवा का गुजर नहीं है, पास नहीं है। अगर बिजली आती रहे और पंखे चलते रहे तो थोड़ा सा आदमी सांस लेता रहता है, इजी फील करता है। अगर खुदा ना खासा मैं जो 2-3 दिन से रिपोर्ट टीवी पे यहाँ कराची में देख रहा हूँ, तो किस घर में किसी इलाके में 2 दिन से लाइट नहीं है, कहीं 3 दिन से लाइट नहीं है, कहीं कहीं रोडों पर लोगों ने आग लगा रखी है। तो ये बिजली की वजह से भी थोड़ी सी अफवाह में इजाफा हुआ कि लोग जो है वो हफ्ते में और ज्यादा परेशान हो गए। दूसरा ये है कि रमजान का महीना था, लोगों ने रोजे नहीं छोड़े और उसमें भी डिहाइड्रेशन का शिकार हुए। तो हम बाकायदा जो मेरे पास यहाँ पर जमा के और ये दुनिया टीवी के नुमाइंदे हमारे दफ्तर में आते के देखिए, जो बूढ़े हजरात हैं खुदा के वास्ते वो रोजा छोड़ दें, इसमें इस्लाम में इतनी आसानी है कि हम इसे बाद में रखते थे रोजा कजा कर ले। जाहिर बात है कि अब इतनी डिहाइड्रेशन हो रही है, हम गर्मी को तो देखिए कुदरती आफत है जो आई है, कुदरती आफत को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन बेटर प्लानिंग से हम उसको उसकी होने वाली अमवात को होने वाले जो आफ्टरमाथ है उसको हम कम कर सकते हैं। तो इस बारे में कोशिश की गई, लेकिन जाहिर बात है कि इंतजामिया इदारे तैयार हैं। आज मैं टीवी देख रहा था यहाँ अभी कुछ देर पहले, तो रेंजर्स ने मुझे याद लग रहा है कहीं कहीं कैंप लगा लिए हैं, फौज भी शायद आ गई है। तो सिविल हुकूमत सूबाई गवर्नमेंट शायद वक्त तक ये काम ना कर सकी कि उन्होंने लोगों को वहाँ ड्रिप भी लगाई हुई है और लोगों को वो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पानी भी पिला रहे हैं, बाकी और भी चीजें हैं, और उन्होंने बाकायदा तंबू लगा के कैंप लगा लिए हैं, जो शायद अगर पहले लगा लिए जाते तो ज्यादा बेहतर होता।
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रशीद साहब, आप और अनवार काजमी हमारे साथ रहें। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मुज़ाकरा सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में गर्मी की शदीद लहर के बारे में, जिसमें अब तक सैकड़ों जाने ज़ाया हो गई हैं। हमारे साथ इस वक्त मेट ऑफिस के डायरेक्टर अब्दुल रशीद हैं, जबकि ईदी के तर्जमान अनवार काजमी हैं। जिन लोगों ने हमें कॉल किया है उनको आईडी ब्रेक के बाद लेते हैं, लेकिन इस वक्त चलते हैं एक ब्रेक की तरफ।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urduvoa.com पर बराह राह सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی ہم کالر کی طرف جاتے ہیں, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. رانا دلشاد نے کال کیا ہے کوٹ اڈو سے. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم نفیسہ صاحبہ, میں رانا دلشاد کوٹ اڈو سے بات کر رہا ہوں.
جی جی کہیے.
تو میں یہ ذرا ایک منٹ مجھے دینا سر. میں جو ہے نا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہاں کی جو حکومت کی نااہلی ہے بالکل, وہ جو ہے نا واٹر بورڈ والے ہیں, مافیا جو ہے نا وہاں لگی ہوئی ہے, ان کو پانی نہیں مل رہا کراچی والوں کو, ہاں جی ان کے یہ صرف اور صرف یہ وہاں کی جو سندھ کی حکومت ہے نا, اس کی بہت بڑی ناکامی ہے. بی بی صاحبہ جب سے شہید ہوئی ہیں انہوں نے چور بازاری مچائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور بلال اکبر صاحب ہیں رینجر, ڈی جی رینجر, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا بالکل بلا تقریر ہیں, جو بھی ان مافیا میں ملوث ہیں ان کو ایک ایک کو جو ہے نا انصاف کے کٹہرے میں لے کے آئیں, اور جو ہے نا وہاں کے یہ مسئلے حل, یہ چور بازاری ختم کروائیں.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ہم چلتے ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے ایک آفس بیئر کی طرف, ڈاکٹر شیر شاہ سید جو اس وقت اندرونی سندھ میں ہیں. اور ڈاکٹر شیر شاہ آپ کو خوش آمدید. تو جی تو آپ بتائیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کراچی میں یا سندھ میں زیادہ اموات ہوئی ہیں گرمی کی وجہ سے؟ آپ اندرونی سندھ میں ہیں, آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں اس سلسلے میں؟
جو اخباری اطلاعات ہیں اور جو ہمارے دوست خبر دے رہے ہیں اس کے مطابق کراچی میں اس وقت 500 سے زیادہ اموات ہیٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں, گرمی کی وجہ سے ہوئی ہیں. سندھ میں بھی گرمی تھی لیکن سم ہاؤ گرمی کی وہ لہر نہیں تھی جو کراچی میں شکایت اٹھی. اور اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک بات تھی کہ جو مرنے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی ونریبل تھے, جو غربت کا شکار تھے, جو بیمار تھے. اور دوسری مصیبت یہ ہوگی کہ آپ سب کو بتایا کہ کراچی میں رشتہ کئی مہینوں سے پانی کا کرائسس چل رہا ہے.
بالکل
90% پانی کا جو سپلیمنٹ جمع کرتے ہیں آپ, وہ نارمل ہیلدی انسان کے پینے پلانے کا نہیں ہوتا ہے. تو ایک طرف سے یہ بےچارے اس ہیٹ کا شکار ہوئے, اوپر ان کی طبیعت خراب تھی, اور جب انہوں نے پانی وانی پینے کی کوشش کی تو پانی بھی خراب تھا. اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہو گئی, جو کہ بہت ہی شرمناک ہے. ایک بات سوچنے کی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں اور سیاستدان ہیں ان میں تھوڑی سی بھی شرم نہیں ہے. ابھی نفیسہ میں پچھلے ہفتے مظفر آباد گیا ہوا, اور یہ زلزلے کے 10 سال کے بعد دوبارہ میرا جانا ہوا. آپ یقین کریں کہ مظفر آباد سے نیچے تک جہاں تک بھی چلے جائیں کوئی سروس لائن نہیں ہے. سارے ہوٹل موٹل اپنے فضلات اور پیشاب کا اخراج کر رہے ہیں, جا کے دریاؤں کے پانی میں مل رہا ہے, نہروں کے پانی میں مل رہا ہے. یہ صورت حال ہے جس ملک میں لوگ جو ملک جو ہے ایٹم بم بنا رہا ہو اور اس ملک میں بڑے بڑے شاہراہیں بن رہی ہوں, اس ملک کے حکمران اگر اپنے عوام کو ایک صاف ستھرا پانی نہ دے سکیں
جی جی.
ان کے لیے ایک
جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر شیر شاہ. یہی سوال میں کرنا چاہتی ہوں عبد الرشید سے, یہ میٹ آفس کے ڈائریکٹر ہیں. رشید صاحب آپ ہمیں بتائیں, یقیناً نظر آتا ہے کہ گورننس کی کمی کی وجہ سے سندھ میں زیادہ اموات ہوئے ہیں اور کراچی نے بہت زیادہ سفر کیا ہے, لیکن آپ تو پورے ملک پر نظر رکھتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ گرمی پورے ملک میں پڑی ہے؟ اور اگر پڑی ہے تو پھر دیگر شہروں میں دیگر صوبوں میں اتنے اموات کیوں نہیں ہوئے؟
اس کی وجہ میں نے آپ کو ابھی کچھ اپنے ذکر کیا, اس کی وجہ ہے ہیٹ انڈیکس. میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر ہیومیڈیٹی چونکہ زیادہ ہوتی ہے تو جو ٹیمپریچر جب رائز کرنے لگتے ہیں تو وہ ان کی فیلنگ جو ہے ہیٹ انڈیکس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے, جو اپر پاکستان میں نہیں ہوتی. جیسے میں نے آپ سے بھی عرض کیا تھا کہ 43 ٹیمپریچر کراچی کا ہو جائے, 30% ہیومیڈیٹی ہو تو انسانی باڈی کو 49 میں قریب فیل ہوگا. اسی طرح سے اگر ہیومیڈیٹی 30 سے بجائے 40-50 ہو جائے تو اور زیادہ محسوس ہوگا. تو باقی شہروں میں یہ صورتحال نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر نہریں ندیاں نالے زیادہ ہیں, لوگ جلدی کولنگ حاصل کر لیتے ہیں. کراچی میں یہ سسٹم نہیں ہے, لوگ بہت زیادہ ہو جائے تو پھر سیو چلے جاتے ہیں ہاؤس میں یا پیراڈائز پوائنٹ. ہاؤس میں پیراڈائز بھی لوگوں کی ریچ سے دور ہے کیونکہ وہ پرائیویٹ گاڑیاں کرنی پڑتی ہیں, صرف سیو ایک جگہ ہے جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ جاتی ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں. तो असल वजह यह है कि हीट इंडेक्स कराची का बढ़ गया था। अमरिंदर सिंह भी ज्यादा जो कि साहली इलाके हैं वहां पर ज्यादा अमवात हुई है मिट्टी वगैरह में और ये छात्रों वगैरह में, क्योंकि वो भी कोस्टल इलाके हैं। तो जैसे ही ये विंड, शुक्र अल्लाह का कि आज मैंने मैसेज किया कि चेंज हो गई है, तो अब ये सिलसिला खत्म हो जाएगा।
जी जी।
लेकिन ये है कि हीट इंडेक्स बढ़ गया था हमारे सूबे का।
अच्छा, काजमी साहब आप तो कराची के भी रहवासी हैं, आप कुछ बता सकते हैं? जैसे डॉक्टर शेरशाह ने कहा कि इंतजामी जो है कमजोरियां थी जिसकी वजह से इतनी ज्यादा अमवात हो गई कराची में, आप क्या देखते हैं, क्या होना चाहिए था ताकि अमवात की शरह जो है इतनी ज्यादा नहीं होती? जी अनवार काजमी। अच्छा, ईदी के तर्जुमान अनवार काजमी की लाइन ड्रॉप हो गई है, उनको हम दोबारा लेते हैं। लेकिन डॉक्टर शेरशाह, सुनने वालों को अगर आप बता सकें कि इस वक्त जिन लोगों को शदीद गर्मी महसूस हो रही है, जिनका हीट इंडेक्स बहुत ज्यादा है, उनको क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर शेरशाह, अनवार काजमी, अनवार काजमी आप हमारे साथ हैं? जी अनवार काजमी भी नहीं है हमारे साथ, सिर्फ अब्दुल रशीद हैं।
जी मैं मौजूद हूँ।
जी जी, हम दो बाकी दो साहिबान की लाइंस ड्रॉप हो गई हैं, उनको हम दोबारा लेते हैं। लेकिन जी जी जी, लेकिन आप हमें बताएं कि जो सूरत हाल है, जैसे कि आपने बताया कि अभी बारिश।
जी जी मैं बिल्कुल हूँ।
अच्छा जी, सॉरी मैं काजमी साहब आपकी तरफ इसलिए आ रही थी कि डॉक्टर शेरशाह ने एक दिलचस्प बात की कि इस वक्त इंतजामिया बिल्कुल तैयार नहीं नजर आ रही थी, हालांकि हम भी जानते हैं कि इससे कबल भारत में शदीद गर्मी हुई थी। आपके ख्याल में इंतजामिया को क्या तैयारियां करनी चाहिए थी ताकि इतने अमवात नहीं होते?
मैं इंतजामिया की कमजोरी पहले आपको बताऊं।
जी बताइए।
हमारी मोर्चरी में 200 तक की गुंजाइश थी रखने की।
जी।
जब वो नहीं रही गुंजाइश, उसके बाद मीडिया के जरिए, खासतौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ये बात आई कि जी हम जहरे के फुटपाथ पर तो नहीं रख सकते थे, तो इस पे मुझे एक बहुत जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट के जो है साहब ने टेलीफोन करके कंफर्म किया।
जी।
मैंने कहा भाई आप अपने आदमी वहां भेजें, देखें हॉस्पिटल में देखें। अब तक के ये हकीकत है कि गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने कोई जिम्मेदारी से ये काम नहीं किया। इनको चाहिए था कि अवेयरनेस पैदा करते कि भाई गर्मी में ना निकले। आज ही डॉक्टर शेरशाह खैरपुर में है, शाम में मेरी बात हुई।
जी जी।
मैंने उनसे भी यही रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब आप भी बाकायदा अवेयरनेस के लिए बयान दें और टीवी चैनल वगैरह के जरिए लोगों से यही अपील करें कि आप मत धूप में मत निकलें। देखिए जैसे ये हकीकत है कि बेचारे यहाँ गरीब लोग हैं, टू माउथ वाले रमजानों में बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, वही निकलते हैं और वही फिर मौत का शिकार होते हैं।
बिल्कुल।
ये सारा हो रहा है, इसमें गवर्नमेंट को भी दिलचस्पी लेनी चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। मसला पानी का है, बिजली का है, कई मल्टी प्रॉब्लम जो है वो आ रहे हैं, तो इन सारे प्रॉब्लम जो है उसको मतलब ये कि हल करने की बात हो। इतनी बड़ी, मैं 500 की रिकॉर्ड से डॉक्टर शेरशाह
बिल्कुल सही है। आज हमारे पास जो रिपोर्ट है वो ये कि सिंध के जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं सईद मंगनेजो, उन्होंने कहा है कि 612 लोग हलाक हुए हैं और ये सिर्फ सरकारी जो अस्पताल हैं उसमें हलाक हुए हैं। डॉक्टर शेरशाह आप बताइए कि इस चैनल के जरिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे के गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए उनको क्या तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए?
देखिए किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदी जो है हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह होती है, और ये जो जबरदस्त किस्म की गर्मी आ रही है, आवाम को चाहिए, खासतौर पर गरीब लोगों को जो काम कर रहे होते हैं और साथ साथ खुद कमजोर भी होते हैं, मेहरबानी करके पानी पिए, साफ पानी जरूर पिए वो, और साए में रहें, और कोई जरूरत नहीं है धूप में बाहर निकल करके कुछ अच्छा काम करने की, इससे ये खर्चा हो कि उनको एक ऐसा रिवर्सिबल डैमेज जाएगा जिसके बाद उनका टेम्परेचर का निजाम ही खत्म हो जाएगा और वो मौत का शिकार हो जाएंगे। आज सुबह भी कई दोस्तों ने मुझे फोन किया और बताया कि कुछ लोगों की तबियत इस तरह से हो रही है तो हम क्या करें, क्योंकि नॉन डॉक्टर थे। सबको मैंने ये कहा कि भाई ORS लें और मैक्सिमम पानी पिए, क्योंकि ये गर्मी पानी की गैर मौजूदगी में जिसम के ऊपर बहुत बुरा असर डाल सकती है। और यही बात टीवी चैनलों पर, रेडियो पर हर एक को दोहराना चाहिए। आवाम हमारे अनफॉर्चुनेटली लाइल्म है, आगही से खाली है, तालीम से महरूम है, जो बेचारों की समझ में नहीं आता है। और एक तरक्की याफ्ता कहलाने जाने वाला मुल्क में 612 लोग इस तरह से मर जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक और अफसोसनाक बात तो हो नहीं सकती।
अच्छा जी, आप तीनों हजरात हमारे साथ रहे, हम आवाम को भी सुनते हैं। और बहुत मुख्तसर हमें दादू से कॉल किया है हाफिज मोहिब अली खोसो ने। जी जनाब कहिए।
मैडम अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी। गोट बुरड़ा खैर पनासन शाह दादू सिंध से हाफिज मोहिब अली खोसो अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल है तीनों मेहमानों से, जो भी जवाब देना चाहे। सिंध में तकरीबन 600 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं गर्मियों की वजह से। यहाँ ना कोई बिजली की सहूलत है, ना कोई पानी की सहूलत है। हम टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स से बड़े बड़े लोग एसीओ में आराम और इशरत कर रहे हैं क्या? और उसके बाद सिंध हुकूमत कह रहा है कि वफा की जिम्मेदारी है, वफा कह रहा है कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी। आखिर जिम्मेदारी कौन किसकी है? लोग मर रहे हैं, ये एक दूसरे इनको सबको पता है कि ये जिम्मेदारी किसकी है, लेकिन ये आपने आप जान छुड़ाने की कोशिश करें। लोग कहाँ जाए, खुदा राय ऐसा मत करें, कुछ रहम करें लोगों के ऊपर, लोगों की जानों के साथ क्यों खेल रहे हैं।
बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और आपने एक दिलचस्प सवाल उठाया है। काजमी साहब, हम पाकिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के भी अहलकारों को मदऊ कर रहे हैं दूसरे हिस्से में, लेकिन ये बताइए कि उनकी तरफ से कोई मदद आपने देखी जो लोगों के लिए आई हो कराची में, सिंध में?
नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखी। फैसल नीदी सिविल हॉस्पिटल में गए, वहां पे पता लगा कि जी इमरजेंसी में एसी काम नहीं कर रहे, खराब हो गए, मेंटेनेंस नहीं हो रही है। तो आज ही उन्होंने इमरजेंसी पे चार चार टन के 36 टन के एसी लगाए हैं। वहां पर रेंजर ने भी अपने जो है कैंप बना लिए हैं। तो इसमें द डिजास्टर मैनेजमेंट भी तस्वीर ले रही है, न सिंध गवर्नमेंट बैन करना कि सिविल में जो है फैसिलिटी शाम से मौजूद थे, उनसे कहा भाई जो भी जरूरत है, दवाएं हैं या जो है वो हम आपको देते हैं, ORS दिया गया। तो अब ये देखिए एक्टिव नहीं है कोई भी, सिंध गवर्नमेंट हो या विफाकी हो, दोनों बैठ के तमाशा देख रहे हैं। ये वहां डिजास्टर मैनेजमेंट सिंध की अलहदा है, नेशनल अलहदा, इनमें से कोई एक्टिव नहीं है।
बहुत अफसोस की बात है। रशीद साहब, इस वक्त हम आप तीनों मेहमानों को अनकरीब खुदा हाफिज कहेंगे, लेकिन जाने से पहले आप हमें बताएं, आप जानते हैं कि मानसून का जो है सीजन वो अनकरीब शुरू हो जाएगा, आपने क्या देखा है कि सरकार इस सिलसिले में कुछ किसी हद तक तैयार है कि अगर हम, जैसे कि हमने भी सुना है कि कभी कभी अगर बारिश होगी तो बहुत तेजी से बारिश होगी, ऐसे में किस किस्म की तैयारी है इस वक्त?
असल में सबसे पहले तो मैं आपको ये शेयर करूं कि इस साल जो हम बरसों में बरसात प्रिडिक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में वो बिलो नॉर्मल है
जी जी।
और आपको हैरानी होगी ये जान के कि हमारा सिंध और बलोचिस्तान का जो सूबा है सदर्न पाकिस्तान, ये ज्यादा इसका शिकार होगा। यहाँ पर लेस देन नॉर्मल बारिशें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2015 में, जबकि 2014 में भी इसमें बलोचिस्तान में बहुत कम बारिशें हुई थी। लेकिन वो जो आपने कहा कि क्लाइमेट चेंज का मामला है, ग्लोबल वार्मिंग का, कि इवेंट मुख्तसर होंगे मगर तेज तरार होंगे, उसके लिए हमारी मीटिंग्स होती रहती है PDM में से, NDM में से। और अभी ये प्री मानसून बारिशें शुरू हो गई है पाकिस्तान में, 1 जुलाई से मानसून भी शुरू हो जाएगा, वो तो बात की बात है, इंशाल्लाह ताला उसको देख लेंगे। लेकिन अभी जो आप इस मौजूद में गुफ्तगु कर रही है, इसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाह रहा था
जी जी।
अगर आप इजाजत दें
बिल्कुल, बिल्कुल।
कि आप अभी प्रोएक्टिव मेजर होनी चाहिए, तो मैं खास तौर पर उन बुजुर्ग शहरियों से दरख्वास्त करूंगा कि जो बहुत ज्यादा बूढ़े हैं, कमजोर हैं, रोजा ठीक है, इस्लाम की इबादत है, लेकिन अगर खुदा के वास्ते मौसम शदीद हो गया है, देखिए एक कुदरती आफत आ गई है, कैजुअल्टीज देख रहे हैं टीवी में, देख रहे हैं कि तकरीबन 600 फीगर गवर्नमेंट की है और 17 अनऑफिशियल बहुत ज्यादा हो, तो इस सूरत में अगर रोजा वो कसा कर दें बाद में इससे कोई हर्ज नहीं है, अपने आप को बचाएं। अभी आपके डॉक्टर कार्डियो डॉक्टर दूसरे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि गर्मी से बचने के लिए ORS का इस्तेमाल करें, पानी ज्यादा पिए, मशरूम ज्यादा पिए, और बिला जरूरत बिला ऐसे जरूर घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है। परसों मुझे बहुत खुशी हुई जामे कराची तक बयान पढ़ के उन्होंने तमाम पेपर कैंसिल कर दिए कराची यूनिवर्सिटी ने, ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि जो हालात थे उसमें पेपर आदमी क्या देगा, जब ना वहाँ पंखे हैं ना पानी होता है और फिर ऊपर से गर्मी का ये हाल है। तो बुजुर्ग शहरी और बच्चे जो ज्यादा मुतासिर हुए हैं इस स्ट्रोक से उनको चाहिए कि रोजे छोड़ दें, और इंशाल्लाह ताला ये हीट वेव भी उसे खत्म होने जा रही है, लेकिन ये कि अगर दोबारा ऐसे की सूरत हाल पैदा होती है तो इंसानी जान की हुरमत अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा है, उसको बचाया जाना चाहिए। रोजे बाद में रख लिए जाएंगे, कोई गुनाह नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। और ये है कि अपनी जान की हिफाजत करें, खुदा के वास्ते जान बचाएं।
अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन रशीद साहब, क्योंकि हम मानसून के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत मुख्तसर हम काजमी साहब से भी बात करते हैं। काजमी साहब, आप जानते हैं कि जब बारिशें आती हैं, और हालांकि रशीद साहब का कहना था कि बिलो नॉर्मल होगी, यानी कि जितनी तवक्को की जा रही है उससे कम होगी, लेकिन जब होगी तो हमने सुना है कि बहुत तेज होगी, ऐसे में आपके ख्याल में क्या तैयारियां होनी चाहिए?
देखिए बेबी, तैयारियाँ तो बहुत कुछ बयानात में होती हैं। असल में इन तमाम मसाइल को गरीब आवाम ही झेलते हैं। मिसाल वो ये है कि शदीद गर्मी होगी, शदीद बारिशें होंगी, वो गरीबी शिकार होंगे। यकीनन बयान किया तक तो बहुत सारी बातें चलती हैं, या छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, नुकसान तो आवाम का है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो तैयारियों का दावा कर रहे हैं वो मतलब ये कि हुई है या नहीं हुई है। ना अब तक नाले साफ हुए हैं, ना गटर साफ हुए हैं, ना पानी की निकासी के जो रास्ते हैं उनको साफ किया गया है। होगा यही कि फिर बेचारे गरीब जो है वो इन शदीद बारिशों का शिकार होंगे। तो इसको जो है बयान की हद तक है, इससे ज्यादा कुछ है।
बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे ईदी के तर्जमान अनवार काजमी, उनके साथ थे मेट ऑफिस के डायरेक्टर कराची में अब्दुल रशीद, और हमारे साथ थे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुमाइंदा डॉक्टर शेरशाह सैयद। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। इसके बाद एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdu.voa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें सब मिलते हैं urdu.voa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। पाकिस्तान में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक urdu.voa.com पर बराह रास्त सुनिए। हमारे ताज़ा तरीन ब्रॉडकास्ट बुलेटिन के लिए दिन में कई दफा आइए। दिन हो या रात, जब दिल चाहे इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मुज़ाकरा सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में गर्मी की शदीद लहर के बारे में, जिसके नतीजे में अब तक सैकड़ों जानें ज़ाया हो गई हैं। इस वक्त हमारे साथ एक माहौलियात के माहिर और हिशार फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर सोनू खनगरानी हैं, और उनके साथ अनकरीब होंगे पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बलूचिस्तान के साबिक सरबराह डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक आफ्ताब। तो डॉक्टर सोनू, आपका खुश आमदेद। डॉक्टर सोनू, आपसे सबसे पहले इब्तिदा करते हैं, आप हमें बताएं, आप जानते हैं कि भारत में सख्त बारिश हुई और उसके नतीजे में बताया जा रहा है कि हजारों जानें ज़ाया हुई, ऐसे में आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था, क्योंकि हमें मालूम है कि वही सिस्टम पाकिस्तान की तरफ आ रहा था।
देखिए जी, पाकिस्तान में सबसे बड़ा आलमिया तो मेरे ख्याल में आपको भी पता है, सबको पता है, ये है कि यहाँ पे डिजास्टर इतने तेजी और फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं और मुख्तलिफ नियत के डिजास्टर आ रहे हैं, जिसमें फ्लड्स भी हैं, साइक्लोन्स भी है, मुतवका होते हैं, अर्थक्वेक का भी कभी कोई आ जाता है, और अभी ये हीट वेव नया एक आया है। जहाँ पे प्रिपेयरनेस का तरीका जो है, जहाँ पे प्रिपेयरनेस होनी चाहिए, इदारे तैयार होने चाहिए, इदारों के पास तैयारी होनी चाहिए, ये मेरे ख्याल में कहीं पे प्लान के तौर पे नजर नहीं आती, रिएक्शन के तौर पे कुछ चीजें होती हैं, उनका कभी फायदा होता है कभी वो बहुत लेट हो जाती है। तो मेरा ख्याल है जो जितनी भी बारिशें अगर ये इस तरफ आती हैं, जो बांदे में हुई आपने सुनी आपने बताया, और जो इंडिया में होने जा रही है हो रही है, पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता ये बारिशें आती तो जो आज 1000 लोग मरे हैं इससे ज्यादा शायद और नुकसान होता, लेकिन उसके लिए भी तैयारी नहीं थी। मेरा तो मैं कराची में रह रहा हूँ पिछले 2 साल से, और 1 महीने से ये बहुत सारी खबरें आ रही हैं, कभी बहुत तेज गर्मी की खबर है ये बल्कि हो रही है, कभी तूफान आने का इम्कान है, कभी बारिशें आने का इम्कान है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे किसी किस्म का कोई हंगामी इजलास हुआ हो जिसमें इदारे तैयार हों, इदारे के जो कारणदे हैं वो तैयारी नजर आती उनकी नजर आती है। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान में वो इन इदारों की प्रिपेयरनेस की एफिशिएंसी पे है, क्योंकि ये तैयारी कर ही नहीं पाते तब तक इमरजेंसी आ चुकी होती है।
बिल्कुल सही। लेकिन डॉक्टर सोनू, क्योंकि आप माहौलियात के माहिर भी हैं, लिहाजा आप हमें कुछ बता सकते हैं कि आपने देखा कि सैकड़ों अमवात हुई हैं पाकिस्तान में, सिंध में, खास तौर पे कराची में, क्योंकि समंदर की हवा रोकी गई। ऐसे में आपके ख्याल में किस तरह जाने बचाई जा सकती थी? क्या अगर हरियाली ज्यादा होती और पार्क्स ज्यादा होते तो इस तरह की शदीद गर्मी होती?
देखिए, सबसे पहले तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि हमने अपने सारे घरों का सहन, घरों की छतें कंक्रीट कर दी, मट्टी बैकयार्ड का जो कच्चा होना जिसमें कोई दर्ख पौधा हुआ करता था वो बिल्कुल ही सफाया हो गया। कराची में न रोड पे दर्ख नजर आता है, ये बिल्कुल ही जो एलियन प्लांटेशन है, प्लांट्स हैं वो लाए गए हैं, उनका एक फायदा भी है कि नजर आते हैं ग्रीन, लेकिन वो इम्पैक्ट जो लोगों को साया दे सके जिसके नीचे लोग बैठ के ठंडी हवा ले सके वो यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे पुराने दर्ख अभी खत्म हो चुके जा रहे हैं या उनको काटा जा रहा है, डेवलपमेंट भी नजर हो रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये सिर्फ कराची में नहीं हो रहा, ये थर में भी हो रहा है। टोल के हवाले से जितने भी रोड बन रहे हैं उसमें लाखों के हिसाब से दर्ख जो वहां पे नेचुरल थे उनको काटा गया है, और मैंने पिछले 1 साल में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ कहीं से भी एक दर्ख लगाने का मंसूबा नहीं देखा। तो हमारे यहाँ एक कंक्रीट प्लान आया है जिसमें सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट इस्तेमाल हो रहा है, उसके तरह लोहा सरिया इस्तेमाल हो रहा है, ये मिट्टी का ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली कोई चीज नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ कि इसका बड़ा इम्पैक्ट आ गया है और मजीद आने वाला है, क्योंकि ये जितनी भी चीजें होनी है ये जब तक मैं आपको बताऊं कि देखिए किसी भी मुल्क के लिए जो इंफॉर्मेशन देता है बताता है कि 25-26% फॉरेस्ट का एरिया होना चाहिए। पाकिस्तान में वो 5-6% की क्लेम कर रहे हैं, लेकिन सिंध जैसे इलाके में कराची में जहां पे कराची का 60s के दौर में जो टोटल उसका फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, हॉर्टिकल्चर की जो सप्लाई है वो कराची के इर्द गिर्द से आया करती थी, कराची के अंदर बगीचे थे, वो अभी कहाँ है? वो सारे माफिया बिल्डर्स ने टेकओवर कर लिए हैं, जहाँ पे पूरा कंक्रीट ब्लॉक बने जा रहे हैं, फ्लैट से फ्लैट बने जा रहे हैं, जिससे कोई नेचुरल इन्वायरमेंट का उसके साथ वेंटिलेशन का कहीं पे भी कोई गमले रखने का भी रिवाज नजर नहीं आता। तो ये सबसे बड़ी हमारा एक प्रॉब्लम है।
बिल्कुल सही।
दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो पानी का है। एक तो पानी बहुत कम है, फिर पानी के मसाइल हैं, पानी की मिसमैनेजमेंट है, और दूसरा जब भी अगर ये बारिश आएंगे जब भी आए तो उसमें जो मॉइस्चर पानी होता है उसको रिस्टोर करने का, उसको हार्वेस्ट करने का भी कोई निजाम नहीं है। तो हम माहौल में जो कुछ तब्दीली आ रही है उसके तो बिल्कुल अपोजिट में जा रहे हैं।
बिल्कुल सही है। यही सवाल मैं करना चाहूंगी। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक आफ्ताब, जो कि प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह रहे हैं बलूचिस्तान में, और इस वक्त क्वेटा में होते हैं। डॉक्टर आफ्ताब, आपको खुशामदीद।
थैंक यू जी।
तो सबसे पहले तो ये बताइए, हमने तो सुना कि सिंध में और कराची में बहुत सारी अमवात हुई हैं गर्मी की वजह से, आप हमें बता सकते हैं बलूचिस्तान में भी ऐसा हुआ, क्योंकि वो वही पट्टी है?
देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक है कराची का, वो तो आपने भी मीडिया में देखा होगा, हमने भी कोई 4 दिन के अंदर कुछ 722 हलाकतें हो चुकी हैं, और बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन ऐसी नहीं है।
अच्छा।
इक्का दुक्का वाकयात तो रिपोर्ट हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों से, برسان کا آپ پتہ ہے کہ کوئٹہ تو نسبتاً بہتر ہے موسم کے اعتبار سے, گو کہ یہاں بھی 35 درجے تک چلا گیا ہے درجہ حرارت. جو ساحلی علاقے ہیں وہاں سے بھی کوئی ایسی ہمیں کوئی اطلاعات ایسی نہیں ہے, کوئی ایک کا دکا واقعات جیسے مطلب ہوتے رہتے ہیں, ہر سال ہوتے ہیں, اس طرح کے ہوئے ہیں.
اچھا گڈ, لیکن بڑی تعداد میں یہاں پہ نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے, لیکن جیسے ڈاکٹر سونو خنگرانی نے بتایا کہ جو درخت ہیں جو اسی ماحول میں پلتے ہیں بڑھتے ہیں, ان کو لگانے کا اگر سلسلہ ہو تو پھر ہریالی بڑھے گی اور موسم پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. آپ نے کیا دیکھا یہ جو زیارت میں جو جونیپر فارسٹ ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ ان کو بڑی تعداد میں نکالا گیا ہے, یہ ماحول کا کیا اثر ہوا ہے؟
دیکھیں جی, جہاں بھی درخت کٹے گا ماحول پہ اس کا منفی اثر تو ہوگا, لیکن ایک جو بات میں محسوس کر رہا ہوں اور جو میں دیکھا ہے ریسنٹلی, میں نے زیارت کا وزٹ بھی کیا ہے, کوئی 2 ہفتے پہلے میں گیا ہوں زیارت. اب تھوڑا سا لوگوں میں جو ہے شعور میں ان کے فرق آیا ہے, وہ یہ سوچنے لگے ہیں کہ نہیں بھائی یہ درخت ہمیں نہیں کاٹنے ہیں, اس کا کوئی متبادل ہمیں ملنا چاہیے, جس پہ کچھ گورنمنٹ نے کام بھی کیا ہے, کوئی گیس سپلائی والا سلسلہ شروع ہوا ہے. تو درخت کی کٹائی نسبتاً کم ہو گئی ہے, اب وہ اس طرح سے نہیں کٹ رہے, لیکن جونیپر آپ کو پتا ہے کہ ان کو صدیاں چاہیے بڑھنے کے لیے, یہ بڑی سلو گروتھ ہوتی ہے, جو کٹ چکے وہ نقصان تو ہو چکا, لیکن ایک خوشائن بات یہ ہے کہ نئے درخت لگائے جا رہے ہیں, ہر ایریا میں لگائے جا رہے ہیں, کوئٹہ میں بھی لگائے جا رہے ہیں مختلف قسم کے جو درخت ہیں. اس سال میں دیکھ رہا ہوں کہ روڈ سائڈ پہ ادھر ادھر کافی سارے درخت لگائے گئے ہیں, خود میرے اپنے جس ادارے میں اس وقت میں کام کر رہا ہوں, اس سیزن میں ہم کوئی 10,000 درخت تو ہم نے اپنے ادارے کے اندر لگائے. اچھا. اور مختلف ادارے وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ زیارت میں جو نقصان ہو چکا وہ ہو چکا, اب مزید انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ گروتھ ان کی ہوگی اور پہلے جیسے حالات ہو جائیں گے, گو کہ اس وقت ہم اس کا اثر محسوس کر رہے ہیں. پھر بھی میں کہوں کہ اتنی شدت گرمی کی وہاں نہیں ہے, اس وقت بھی کافی ساری گرینری موجود ہے, گو کہ چشموں کا پانی جو میں نے محسوس کیا کافی کم ہو چکا ہے اس علاقے میں, بارشیں کم ہو گئی ہیں, تو یہ اثر انداز تو ہو رہا ہے. جی
اچھا اچھا جی, آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں, بہت مختصر ایک کالر کی طرف جاتے ہیں. ہمیں کال کیا ہے سیٹ ممتاز انجم نے سرگودا سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر سونو صاحب کو اور دوسرے مہمانوں کو آداب عرض کرتا ہوں. اور یہ جی کہ پاکستان میں اس وقت واٹر ریسورسز جو ہیں وہ 30 دن کے لیے ہیں, جو ہندوستان کے پاس ہے وہ 600 دن کے لیے, اور مصر کے پاس 1,000 دن کے لیے واٹر ریسورسز ہیں. اب ہماری حکومت کو, ہماری عوام کو, ہماری سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں واٹر ریسورسز کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈیم بنانے چاہیے, اور درختوں کی جتنی کٹائی ہو رہی ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. آخر میں ایک گزارش کرنی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ جناب ہمارے نانا جی قائم علی شاہ صاحب کے, تو عبادت کے دن میں وہ مہربانی کرے کسی نوجوان وزیر اعلیٰ کو بت دیں تاکہ عوام کو, سندھ کی عوام کو ریلیف ملے.
اچھا بہت شکریہ. آپ نے اچھا کیا کہ پانی کے ذخیروں کے بارے میں کچھ بات کی. مرید خان نے بھی ہمیں کال کیا ہے میاں والی سے. جی جناب مرید خان کہیے.
السلام علیکم جناب. میں تو سیدھی سادی بات کرتا ہوں کہ اگر ایک گھر میں ایک ٹپ بھی اگر پانی کا ہو تو اس کے سب گھر والے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پارک اگر ہوتے, پارکوں میں لوگ جل جاتا گرمی کے موسم میں, اور اس کے بعد جو ہم مکان بناتے ہیں نہ ہوادار ہوتے ہیں اور نہ ان کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, اندھا دھن جو ہے ہم مکان بناتے ہیں. اگر صحیح طریقے سے مکان بنایا جائے تو اس میں بھی انسان کو بہت ساری بچت ہوتی ہے, اور کسی جگہ بھی کوئی ہیٹ اسٹروک سینٹر نہیں ہے کہیں ہسپتالوں میں, ایسے موقع پہ ہیٹ اسٹروک سینٹر ہوتے تو جانے بچ سکتی تھی لوگوں کی.
بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا, اور ہم اس وقت ایک آئی ڈی بریک کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد لوٹتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سونو خنگرانی اور ڈاکٹر محمد صدیق آفتاب. جی
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں گرمی کی شدید لہر کے بارے میں جس میں اب تک سینکڑوں جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں ماحولیات کے ماہر اور ہشار فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر سونو خنگرانی، جبکہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سابق سربراہ ڈاکٹر محمد صدیق آفتاب بلوچستان سے اس پروگرام میں شریک ہیں۔ ڈاکٹر سونو، جس طرح سے آپ نے کالر کو بھی سنا اور آپ نے ابتدا میں بھی یہ کہا کہ مانسون کے لیے کوئی تیاری نہیں نظر آتی، لیکن ہماری جب بات ہوئی تھی پی ڈی ایم اے کے لوگوں سے تو انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ کچھ کھدائی وغیرہ کر رہے ہیں بعض علاقوں میں جہاں بقول ان کے وہ پانی جمع کر رہے ہیں جو مانسون کی بارش کا پانی ہوگا۔ آپ کی کیا اطلاعات ہیں اور کہاں کہاں یہ کھدائی ہونی چاہیے تاکہ ذخیرہ بنے پانی کا اور ضرورت کے وقت یہ استعمال ہو سکے؟
دیکھیں، ایسا تو کوئی منصوبہ نہیں ہے، لیکن ایک جگہ پہ آرٹیفیشل ڈیم ٹائپ بنایا جا رہا ہے جو تھر میں ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین کا جو پانی جب فلڈنگ ہوگی تو اس میں چھوڑا جائے گا، پھر اس کو ڈیسیلنیٹ کیا جائے گا، پھر وہ تھر میں کول ایریا کو سپلائی کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بالکل ہی ابھی تک میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنا فائدہ مند پروجیکٹ ہوگا، لیکن یہ بھی ایک قسم کا ہے۔ جہاں تک پانی کو نکاسی کو ٹھیک کرنا ہے، اس کے راستوں کو کھولنا ہے، اس کے بلاکیڈ کو ختم کرنا ہے، نالوں کو صاف کرنا ہے، یہ کام اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اگر ابھی کر رہے ہیں تو اگر اگلے ہفتے میں بارشیں جو پہلی جولائی کے بعد متوقع ہیں اگر وہ آتی ہیں اور زیادہ آ جائیں تو ان کے پاس نہ ٹائم ہے صاف کرنے کا، پھر وہی ایمرجنسی ہے جس میں ہم ہمیشہ داخل ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی، یہ پریپیئرنیس کا جو ایشو ہے، یہ پریپیئرنیس کا ایشو مانسون سے 11 مہینے پہلے شروع ہونا چاہیے۔
بالکل بالکل،
اگر یہ پہلے شروع نہیں ہوتا تو پھر وہ ایمرجنسی ہے۔ ایمرجنسی میں ظاہر ہے کیپیسٹی کے ایشو آئیں گے، ریسورسز کے ایشو آئیں گے۔ ایمرجنسی جب ہوتی ہے تو لوگ پھر کہتے ہیں جی یہ تو قدرت نے کر دیا، پھر وہ ہیومن فیکٹر شامل نہیں آتا، اس میں پلان فیکٹر شامل نہیں آتا، تو اس میں بہت سارے اور ایشو ہیں جو مختلف حوالے سے پوری چیز کو شفٹ ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی اے میں کہے یا حکومت سندھ کہے یا کوئی اور بھی کہے، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں اتنی نظر نہیں آتی۔ اکا دکا واقعات ہوں گے، اکا دکا منصوبہ ہے، لیکن وہ اس میں نہیں دیکھا جانا چاہیے کہ وہ رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے یا کسی نالے کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک لانگ ٹرم اول کے لیے ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے، وہ ایک اے ڈی پی کا منظور شدہ پروجیکٹ ہے جس پہ خرچہ ہوگا، اور کتنا کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کے انوائرمنٹ امپیکٹ کیا پڑتے ہیں، اس پہ بہت سارا لمبا بحث ہو سکتا ہے، اس پہ میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ لیکن رین واٹر ہارویسٹنگ، رین واٹر کے لیے جو پانی کا بہاؤ ہے، اس کے لیے جو راستے چاہیے، 2011 میں جو ہمیں نقصان ہوا، 2012 میں جو نقصان ہوا، جو 2010 میں ہم نے تجربہ ہوا، اس سے سیکھنے کے لیے جو ہمیں تیاری کرنی چاہیے، البتہ ہوگی، لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہے جو کسی بڑی مصیبت کو منہ دے سکے۔
اچھا جی، یہی سوال ہم کریں گے ڈاکٹر آفتاب سے، لیکن سکھر چلتے ہیں جہاں سے اے پی پناہ نے کال کیا ہے۔ جی جناب۔
باجی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
باجی یہ مسئلہ ہے توانائی کا، بجلی کا، میں لیا جائے، اس کو پرائیویٹ میں نہیں دیا جائے، اور ایک وفاق کے ساتھ تو کام دے دیا جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے پانی کا مسئلہ، بلوچستان میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق 22 ایسے نالے ہیں، اگر ان کو بند بنایا جائے وہ ایک دریا بن جائے گا، تو اس پر بھی کوشش کیا جائے، تو یہ دو مسئلہ جو حل ہو جائیں گے تو ہمارے پاکستان میں زرعی سارا آئے گا اور یہ ہمارے
شکریہ. بلوچستان کے حوالے سے یقیناً ہم پوچھیں گے ڈاکٹر آفتاب سے, لیکن ہمیں کال کیا ہے آزاد کشمیر سے ممتاز کشمیری نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ کے پروگرام تو بہت اچھے ہیں, لیکن ایک بات کا میں اظہار کرنا چاہتا ہوں. یہ جو پانی کا مسئلہ ہے یہ پورے پاکستان کا ہے, اور اس کی پیداوار جو ہے ساری وہ آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر ہوتی ہے.
جی جی.
یہاں انڈیا والے تو ڈیم بنا رہے ہیں, لیکن پاکستان والے مطلب خاموش ماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں, تو اس سے زیادہ نقصان تو پاکستان کا ہوگا.
اچھا اچھا, شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ڈاکٹر آفتاب, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مستقبل کی طرف پاکستان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور ڈاکٹر سونو نے کہا کہ کوئی تیاری نہیں نظر آتی مانسون کی جو سیزن ہے, اور نالوں کو کھولنے کے لیے اس وقت سرکار کو حرکت میں آنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار کے علاوہ بھی جو این جی اوز ہیں اور دیگر جو عوام کے جو نمائندے ہیں, جو عام لوگ ہیں, وہ کس حد تک اس کام میں شامل ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے جی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, میں تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں گا اس میں. اب یہ کہنا کہ کام کم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. 2007 میں جب سیلابوں کا سلسلہ ہوا, پھر 2010 میں ہوا, تو اس وقت سچویشن کچھ اور تھی, اور اس وقت کافی تباہی بھی ہوئی کیونکہ اس وقت شاید پلاننگ موجود نہیں تھی. اس کے بعد میں آپ کا ایک پچھلے پروگرام میں بات کر چکا ہوں کہ ایک نیشنل پلان ہمارا بنا جاپان کے تعاون سے, جس میں اس ڈیلیگیشن میں بھی شامل تھا پاکستان کی طرف سے, جس میں یہ طے ہوا ایک پورا پلان چیک آؤٹ کیا گیا 10 سال کا. اس میں رفتہ رفتہ مختلف علاقوں میں کام ہوئے ہیں, گو کہ سارا کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے وسائل کی موجودگی پر. اگر بلوچستان کے حوالے سے ہم بات کریں گے تو وسائل یہاں یقیناً کم ہیں, اور وسائل جتنے مہیا ہیں ان میں پھر ترجیحات دیکھ کے اس پہ کام کیا جا رہا ہے, پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جو حکومت کے علاوہ جو سیکٹرز ہیں, این جی او سیکٹر کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, یہاں لوکل آرگنائزیشن ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں مختلف حوالے سے, عوامی نمائندے جو ہیں اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے مجھے ان کی بات سن کے اکثر, وہ ان چیزوں پر توجہ دلاتے ہیں, اپنی حکومت کی بھی توجہ دلاتے ہیں, اور جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ بھی, اور اس پر ہر نمائندہ جو ہے مختلف علاقے والا وہ اپنے علاقے میں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور چھوٹے چھوٹے جہاں جہاں ڈیم کی ضرورت ہے, جہاں کچھ چھوٹے صفائی کی ضرورت ہے, وہ سارے کام ہو رہے ہیں, بلکہ کئی علاقوں میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کام کرتے ہوئے, اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کام نہیں ہو رہا, کام ہو رہا ہے. گو کے بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ ہمارے پاس جو این جی او کام کر رہی ہے اس کے پاس وسائل کتنے موجود ہیں, اور ہمارے پاس جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے پاس وسائل کتنے ہیں, اور اس میں سے کتنا حصہ اس کو کتنی ترجیح دی جا سکتی ہے, کیا دوسرے مسائل جو ہیں اس سے توجہ ہٹا کے صرف اس طرح توجہ دی جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. تو وہ وسائل محدود ہوتے ہوئے کام ہو رہا ہے, اور دونوں سائڈ گورنمنٹ نان گورنمنٹ دونوں سائڈ کے لوگ کام کر رہے ہیں. جی
اچھا, خیر وہ ڈاکٹر سونو مزید کہیں گے اس کے بارے میں, لیکن ہم چلتے ہیں گوجرا جہاں سے فقیر محمد کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب کہیے.
ہاں جی, میں جناب یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 30 ارب روپیہ آج کی خبر کے مطابق بجلی کے بل ادا نہیں ہوئے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, ہاں جی, تو اتنی رقم جب گورنمنٹ کے ادارے ہی نہ دیں تو بجلی کہاں سے آئے, تو عوام تو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہی ہیں.
نہیں, اب بات آپ کی صحیح ہے. ڈاکٹر سونو, کیونکہ ہمارے پاس چند منٹ رہ گئے ہیں, اور آپ بھی این جی او سیکٹر میں ہیں, آپ ہشار فاؤنڈیشن کے سربراہ ہیں, ڈاکٹر آفتاب کا کہنا ہے کہ این جی اوز کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, لیکن جس حد تک وہ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ آپ لوگ مل کر کس حد تک تیاری کر سکتے ہیں تاکہ جس طرح کے نقصانات ہم نے دیکھے اب اتنی شدید گرمی میں, اس طرح کے نقصانات مانسون میں نہ ہوں؟
دیکھیں, اس میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے نا,
वो एनजीओ कर रही है और वो उनको करना भी चाहिए, वो है सॉफ्टवेयर, यानी कि लोगों को आगाही देना, अवेयरनेस देना, कैपेसिटी बिल्ड करनी, डिजास्टर की मालूमात देने की होती क्या है, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरह उससे बचाया जा सकता है, किस तरह बचाया जा सकता है, वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेवल, कम्युनिटी लेवल, गांव लेवल, तहसील लेवल, इस पर तो बात होती है। लेकिन इस तरह की डिजास्टर को मैनेज करने के लिए सिर्फ इसकी जरूरत नहीं है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिपेयर की, इंफ्रास्ट्रक्चर के मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, जो कहीं पे भी एनजीओ की कैपेसिटी में नहीं आता, तो वो तो सरकार को करनी है। मैं उसकी बात कर रहा था, और ये अब्बास साहब जो कह रहे हैं बलूचिस्तान में, मुझे पता है अब्दुल मालिक साहब थोड़े से एक्टिव सीएम है, शायद उसका कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन मैं सिंध के हवाले से बात कर रहा हूँ जहां पे चीजें कम नजर आती है हमें, ये बड़ा अहम है। तीसरी बात जो मुख्य कालास ने की कि पानी, पानी का यहाँ पे डैम बनाने का तो एक आखिरी सॉल्यूशन नहीं है, वो भी बनने चाहिए, लेकिन सबसे पहले जो पानी की मैनेजमेंट है, जो पानी की एफिशिएंट मैनेजमेंट है, जिससे पानी जाया ज्यादा होता है, इस्तेमाल कम होता है, उनको ठीक करने की जरूरत है, वाटर गवर्नेंस को ठीक करने की जरूरत है, वाटर पॉलिटिक्स को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ये डैम से ज्यादा और जो पेचीदा मसले हैं वो गवर्नेंस के हैं, वो वाटर मैनेजमेंट के हैं, जिस चाहे वो पानी बारिश का हो, चाहे वो पानी दरियाओं से आए, चाहे पानी छोटी नहरों में हो, चाहे पानी वाटर टैप घरेलू टैप में हो, इन सब का मैनेजमेंट का, गवर्नेंस का और डिस्ट्रीब्यूशन का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा मसला है। यहाँ पे इन मसाइल को जब तक पोलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ही देखा जाएगा, तब तक ये जो बाकी चीजें हम बात कर रहे हैं कि डैम बनना चाहिए, वो जरूर बनना चाहिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। डैम पहले भी हमारे पास जो बने हुए हैं जिसमें थोड़ा बहुत जखीरा है, उनसे जो पानी आता है उसको तो हम संभाल नहीं पाते, वो मिसयूज होता है, वो लीकेज होता है, वो जिसके पास ज्यादा ताकत है वो ज्यादा ले जाता है, जिसको जो टेल एंड जो बैठा है उसको मिलता ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इनइक्वालिटीज हैं इस सिस्टम में, इस गवर्नेंस में, जब तक उसको देखा नहीं जाएगा, उसको ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक ये जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के असरात हैं उसको भी हम देख नहीं पाएंगे, और ये हम जो ग्रीन पाकिस्तान का ख्वाब देख रहे हैं वो भी अधूरा रह जाएगा, और ये जो नुकसान हैं जो इन डिजास्टर की वजह से होते हैं, जो इंसानी जाया जाने जाया हो जाती हैं, और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नुकसान होता है, जो इरिपेरेबल हो जाता है कभी कभी, तो इन सबको देखने के लिए मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान को एक प्रायोरिटी बनाना चाहिए। अब्बास भाई ने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने कि गवर्नमेंट के पास और काम है, भाई होने होंगे और काम, लेकिन हम समझते हैं कि जिस काम से ज्यादा नुकसान की मुतवक है उस पर तो ध्यान दें, उस पर तो रिसोर्सेज को बढ़ाएं। मिसाल के तौर पर मैं बताऊंगा, अगर एजुकेशन का सिस्टम खराब है तो उस पर इन्वेस्टमेंट करनी होगी ज्यादा, अगर पानी ठीक नहीं चल रहा, पानी की गवर्नेंस ठीक नहीं है, पानी की पॉलिटिक्स दुरुस्त नहीं है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होगी, उसके ऊपर रिसोर्सेज डालने होंगे, ताकि ये सारी चीजें अपनी सिमत में चलें, और आने वाले वक्त में क्लाइमेट चेंज में, एनवायरमेंट में जो इम्पैक्ट आने उसको हम आसानी से मुंह दे सकें। तो मैं तो समझता हूँ ये बड़ा इम्पोर्टेंट।
जी जी, और जब हम सरकार से बात करते हैं तो वो भी मानते हैं कि जो मौसम की शिद्दत है वो अब एक हकीकत बन गई है, और जिस तरह से गर्मी से सैकड़ों जाने ज़ाया हुई, हो सकता है मानसून में भी बहुत बुरे असरात हों, तो उसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ है माहौलियात के माहिर और हिशार फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर सोनू खनगरानी, और उनके साथ है प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साबिक सरबराह डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक आफताब। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज। और इससे पहले आपने सुना मेट ऑफिस के डायरेक्टर अब्दुल रशीद को, उनके साथ थे ईदी के तर्जमान अनवार काजमी, और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के एक नुमाइंदा डॉक्टर शेरशाह सैयद। इस प्रोग्राम के लिए हमारे इंजीनियर थे एल सैंटोस, प्रोड्यूसर अंजुम हेरल गिल। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के वाकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।